तो हम लोग भगवद गीता के चौथे अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक को देखने का प्रयास करेंगे। 18वां श्लोक, कर्मण्य कर्म यह पश्ये,
कर्मण्य कर्म यह पश्ये,
कर्मणि च कर्म यह,
कर्मणि च कर्म यह,
अकर्मणि च कर्म यह,
अकर्मणि च कर्म यह।
मैं समझता हूँ पश्चेत में जो हलंत लगा है उसकी वजह से जब संधि हो रही है तो आ उसमें मिक्स हो जा रहा, तो ऐसा होना चाहिए कर्मण्य कर्म यह पश्ये, अकर्मणि च कर्म यह, सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृतस्न कर्म कृत। कर्मण्य अकर्म यह पश्येत, जो कर्मों में अकर्म को देखता है, यह मतलब जो, अकर्मणी च कर्म यह, जो अकर्म में कर्म को देखता है, सबुद्धिमान मनुष्येषु, एस सारे मनुष्यों में ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है, सयुक्तः अर्थात वह युक्त रहता है, भगवान से अपनी स्थिति को समझता है, कृतस्न कर्म, सारे कर्मों को करते हुए भी वह युक्त रहता है। तो स्पष्ट है, स्पष्ट तो नहीं हुआ, क्षमा कीजिएगा, अभी तो स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। युक्त शब्द आया है, युक्त। प्राय जगत में बुद्धिमान किसको कहते हैं? जो क्लास में टॉप करता है, फर्स्ट आता है, या इंजीनियरिंग में फर्स्ट आता है। लेकिन भगवान के अनुसार बुद्धिमान कौन है? जो कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है। अब इसका हम जब टीका पढ़ेंगे तो अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। गीता भूषण टीका, यह श्लोक कर्म और अकर्म के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करता है जिसको समझना होता है। कर्म मतलब था निष्काम कर्म और अकर्म करता था आत्मज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। अकर्म का अर्थ है और कर्म का मतलब है सेल्फलेस एक्शन, एक्शन विच इज नॉट बेस्ड ऑन सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति की इच्छा से रहित कर्म को यहां पे कर्म कहा जा रहा है, निष्काम कर्म। जो व्यक्ति निष्काम कर्मों के संपादन में अकर्म अर्थात आत्मज्ञान को देखता है, क्योंकि निष्काम कर्मों का संपादन अकर्म तक पहुंचने के लिए किया जाता है, और जो आत्मज्ञान में कर्म को देखता है ऐसा व्यक्ति ही बुद्धिमान है। अर्थ क्या है, अर्थ थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जब व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, निष्काम भावना से कर्म करता है, तो उससे आत्मज्ञान उत्पन्न होता है, हृदय का शुद्धिकरण होता है। तो ये जो निष्काम कर्म है इसका उद्देश्य स्वर्ग पुत्र इत्यादि प्राप्ति नहीं है, अपितु हृदय की शुद्धि है। तो इसमें हम दो शब्दों का उपयोग करेंगे टीका में, कार्य और कारण। इसके अर्थ को समझ लीजिएगा, कार्य का मतलब होता है रिजल्ट या फल, और कारण का मतलब होता है कॉज। तो कारण क्या है? निष्काम कर्म, और फल है आत्मज्ञान। तो जो व्यक्ति ये देख रहा है कि इस निष्काम कर्म के द्वारा यानी कारण के द्वारा कार्य की प्राप्ति होगी यानी ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो यह भी ज्ञान से अभिन्न है, तो व्यक्ति सही तरह से देख पाता है। जैसे हम लोग भक्ति के बहुत सारे कार्य करते हैं तो इसे हम जानते हैं कि इससे हमारा हृदय शुद्ध होगा, वैसे भक्ति में कार्य कारण का संबंध नहीं होता है, लेकिन साधना भक्ति हम करते हैं तो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। जैसे हम भगवान के मंदिर का मार्जन करते हैं तो देखने में क्या क्रिया लग रही है, झाड़ू मार रहा है व्यक्ति, पोछा लगा रहा है, लेकिन इससे उसके हृदय साफ हो रहा है। या जैसे आप ड्यूटी में भगवान के बर्तन माँज रहे हैं तो व्यक्ति सोचेगा ये जवानी दे रहा है बर्तन माँजने के लिए, वो भी फ्री में। आप अपने भगवान के लिए खाना बनाते हैं तो रसोईया बनना था तो किसी होटल में रसोईया बन जाता, यहाँ रसोईया बनने का क्या फायदा है? तो हम समझ सकते हैं इस बात को। या हम लोग जैसे आज केचुआ खाद उगा रहे थे, मतलब केचुआ खाद बना रहे थे, तो कही केचुआ खाद क्यों बना रहे हैं, केचुए में क्यों इंटरेस्टेड है? अरे हम केचुए में इंटरेस्टेड नहीं है, उस खाद को हम तुलसी देवी में यूज करेंगे, उस खाद को हम भगवान के लिए फूल लगाने में जो पेड़ उगाएंगे उसमें इंटरेस्टेड है, केचुए में कौन इंटरेस्टेड है? वैसे मैं सोच रहा था केचुओं को जो हम जल देंगे तो उसमें महाजल मिला देंगे तो उससे उनका उद्धार हो जाएगा, यू कैन डिलीवर देम लाइक दैट। बट आइडिया इज कि वह जो कर्म है वह कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, मैं फिर से आप लोग से निवेदन करूंगा, कृपया 11:55 को जरूर पढ़िएगा भगवद गीता के। प्रभुपाद कहते हैं गीता का सार है, बहुत सुंदर उसमें तात्पर्य लिखा है, जरूर पढ़िएगा। अभी नहीं, लास्ट के बाद पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। कोई कर्म भगवान के लिए करना चाहिए, क्योंकि आप किसी से प्रेम करते हो तो उसे कुछ करना चाहते हो, महत्वपूर्ण बात है। तो आप पहली बात समझ रहे हैं, कर्मों में अकर्म को देखने का अर्थ क्या हुआ, जो निष्काम कर्म है उनके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। निष्काम कर्म का कारण है और उसका जो कार्य है, उसका जो फल है, उसका रिजल्ट है, वो है आत्मज्ञान। वो कर्म करने से घबराता नहीं है, देख रहा है कि अगर मैं निष्काम कर्म करूंगा तो उससे मेरा हृदय शुद्ध होगा, मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, आत्मा के आनंद की प्राप्ति होगी। ये बात समझ में आ गई, कर्म में कैसे हम अकर्म देखते हैं, इसका एग्जाम अभी हम लेते हैं कनौज से आए हुए हमारे प्रभु जी का। किस प्रकार से व्यक्ति कर्मों में अकर्म को देखता है, पहले बताइए कर्म का अर्थ क्या है यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में, और अकर्म का अर्थ क्या है, और कर्म में हम अकर्म को कैसे देख सकते हैं। यस, तीन प्रश्न है। पहला प्रश्न है कर्म क्या है, तो यहाँ के कंटेक्स्ट में कर्म क्या है,
नहीं समझ, निष्काम कर्म जो भगवान के लिए किया जाए,
भगवान के लिए किया जाए, ठीक सीधी बात। और अकर्म का अर्थ क्या है,
जो अच्छा काम हो, मतलब जो कर्म,
इसलिए बुलवा रहा हूँ, अकर्म मतलब है आत्मज्ञान।
आत्मज्ञान
देखिए इसलिए मुंह में नहीं चढ़ रहा है क्योंकि बाकी सारे के केचुओं का ज्ञान समझ में आता है, खाने के कारण समझ में आता है, आत्मज्ञान के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है, तो इसलिए आप लोग बोलेंगे तो समझ में आएगा। तो अकर्म का अर्थ क्या है,
आत्मज्ञान।
तो आप आत्मज्ञान को निष्काम कर्म में आप कैसे देखोगे,
किसी भी कार्य को अपने लिए नहीं करेंगे, भगवान के लिए करेंगे, तो
सही है। हाँ, फिर उसके ये हो गया निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म में आप आत्मज्ञान को कैसे देख पाएंगे,
क्योंकि वो निष्काम होगा उससे हमारा हृदय शुद्ध होगा।
वेरी गुड,
और उसके वजह से हम
आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। तो जो निष्काम कर्म है वह आत्मज्ञान से अलग नहीं है। ठीक, यहां समझ में आया कि कैसे कर्मों में हम अकर्म को देख पाएंगे, इज देयर एनी डाउट। अब देखिए समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब आपको निष्काम कर्म करने की आवश्यकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में नहीं आ रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो उसका मतलब ये बात हमें इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है ना, मंदिर की सफाई करो, ये निष्काम कर्म नहीं, भक्ति है। मैं खाली एक उपमा दे रहा हूँ कि भगवान के आप मंदिर का मार्जन कर रहे हैं तो बाह्य दृष्टि से क्या सोचेंगे आप, अरे तो मार्जन कर रहा है, लेकिन क्या उसके हृदय का मार्जन हो रहा है? यस, तो यह अलग नहीं है, ये कर्म जो है भक्ति का है, वो युक्त है। तो यही प्रभुपाद समझा रहे हैं कि सारे कर्म करते हुए भी वह युक्त दिव्य अवस्था में रहता है, वह कर्म फल से नहीं बनता। अब समझ में नहीं आ रहा तो क्या बताया जाए, कर्म कीजिए फिर, थोड़ा केचुआ खाद बनाइए और तो समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये देखिए आप लोगों को लग रहा है, लेकिन ये बात थ्योरी में समझना तो एक बात है, इसको देख पाना ये कठिन होता है, और जो प्राय जगत में बुद्धिमान भी है वह नहीं समझ पाता इस बात कि किस प्रकार से भक्त लोग किताब बेच रहे हैं। महाराज जी बता रहे थे, कह रहे थे कुछ लोग कितने किताब बेच रहा तो कर्म है, ये भगवद गीता जो बेचना ये कर्म है। वो ये नहीं समझ पा रहे कि भक्त भले ही भगवद गीता बेच रहा है लेकिन उसमें बेचने के लिए उसका कोई खुद का उद्देश्य नहीं है, वो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, उसका उद्देश्य यही है कि मैं शुद्ध हो जाऊं और भगवान की सेवा करूं, सॉरी भगवान का प्रेम प्राप्त करूं। समझ में आ रहा है ये बातें? ठीक है, आत्मज्ञान में कर्म को कैसे देखता है जो मैं व्याख्या पढ़ूंगा आगे, इसकी और व्याख्या कर रहे हैं बलदेव विद्याभूषण, समझ में आ जाएगा। जो मुमुक्षु है वह हृदय के शुद्धिकरण के लिए क्रियमाण कर्म को, थोड़ा टफ लैंग्वेज है, ज्ञानाकार देखता है, क्योंकि इस कर्म का लक्ष्य ज्ञान होता है। कर्म में अकर्म अर्थात कार्य अपने कारण में निहित है। मुझे पता था ऊपर से चला गया, थोड़ा समझा देता हूं। ज्ञानाकार मतलब ज्ञान के स्वरूप वाला दिखाई पड़ता, तो ये तो हमने समझा दिया। जो व्यक्ति मुक्त है वो जानता है मैं निष्काम कर्म करूंगा, अपने कर्मों को भगवान से जोड़ दूंगा, मैं भक्ति की लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, तो स्वाभाविक रूप से आत्मज्ञान मुझे प्राप्त हो जाएगा, मैं भोग की वासना से मुक्त हो जाऊंगा। तो कार्य क्या है? आत्मज्ञान। कार्य का मतलब रिजल्ट, और कारण क्या है? निष्काम कर्म। तो कारण में वह कार्य को देखता है, ही सीज द, इंग्लिश में अगर बोलूंगा, ही सीज द रिजल्ट इन द कॉज। रिजल्ट और इफेक्ट तो की बात है, ही सीज द इफेक्ट इन द कॉज। इतनी बात समझ में आ रही है? कार्य को कारण में देखता है, समझ आ गया? ठीक है।
ये थोड़ा पहली बार सुन रहे हैं शायद इसलिए कठिन हो रहा है। कार्य मतलब होता है इफेक्ट, कारण होता है कारण, कार्य का मतलब होता है इफेक्ट रिजल्ट। कार्य मतलब काम होता है, तो काम कौन करता है? किसी कारण से तो कार्य होता है, ये बात पर ठीक। और जो ज्ञान को कर्माकार देखता है अर्थात कर्म का एक रूप देखता है, क्योंकि कर्म ही ज्ञान प्राप्ति का साधन है, अकर्म में कर्म है अर्थात कार्य में कारण अवस्थित है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है। इसको समझने का प्रयास किए, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना समझना पड़ेगा। ज्ञान को कर्माकार देखता है, यानी कि ये जो कारण है इसका एक फल है ये ज्ञान। ये जो कारण क्या है, कर्म, निष्काम कर्म का फल है आत्मज्ञान। तो कह रहे हैं कि अकर्म में कर्म है, मतलब जैसे उदाहरण के लिए ये टेबल दिख रही है आपको, ये टेबल में मुख्य तत्व क्या है? लकड़ी। और लकड़ी मुख्य तत्व स्वाभाविक है, लेकिन लकड़ी जो है वह किससे आई है? लकड़ी में मुख्य तत्व क्या है? हाँ, अग्नि? नहीं, क्या प्रभु जी कैसे प्रश्न कर रहे हैं? लकड़ी पे मुख्य अंश है, मुख्य तत्व है पृथ्वी। तो अब ये कहें कि लकड़ी पृथ्वी में है तो सही है? लकड़ी तो बड़ा स्पष्ट, लकड़ी द वुड इज ऑन द अर्थ, लकड़ी पृथ्वी में है तो स्पष्ट है। अब मैं कहूं कि पृथ्वी लकड़ी में है तो ये भी सही है, समझ गए? यही बात वाली, लकड़ी में पृथ्वी देख पाना, देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? यहाँ पे अभी आप सामने बैठे हैं, कहीं और तो नहीं जा रहा है मन आप लोग? पृथ्वी में लकड़ी देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? पृथ्वी है कारण और लकड़ी हो गया कार्य। अब आप लकड़ी में पृथ्वी देख पा रहे हो? नहीं, इजी है ये तो, समझ में आ रहा है? लकड़ी पृथ्वी से बनी है तो लकड़ी जो है देख पाने का मतलब, यहां देख पाने का अर्थ है मतलब समझना, देखने का अर्थ है समझना। देखो मुझे, मैं पहले से मालूम कर रहा हूं, बोल रहा हूं, ये थोड़ा फिलोसफिकल है। तो लकड़ी में पृथ्वी को देख पा रहे हैं ना कि नहीं देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं, बोलो देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं, तो समझ में आने लग जाएगा। तो उसी प्रकार से व्यक्ति ज्ञान को कर्म में देख पा रहा है, ये बोला ना? हाँ, अकर्म में कर्म है, ज्ञान में कर्म को देख पा रहा है। ज्ञान है कार्य और कार्य में कारण को देख पा रहा है। ये ज्ञान कहां से उत्पन्न हुआ? निष्काम कर्म से। तो उसको वो निष्काम कर्म दिख रहा है जिसकी वजह से ज्ञान उत्पन्न हुआ। ठीक है, कठिनाई हो रही है, कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ बोल, हाँ, यस, क्वेश्चन, प्रश्न, यस यस यस, व्हाई नॉट?
यहाँ पे सीधा सीधा प्रभु जी, कर्म है और अकर्म है, कर्म का मतलब है निष्काम कर्म,
यस,
और अकर्म मतलब ज्ञान,
ज्ञान,
ज्ञान का मतलब प्रकृति, हाँ, प्रकृति पुरुष का, कि क्या आत्मा है क्या अनात्मा है।
हाँ,
तो पहला तो क्लियर है कि चलो निष्काम कर्मियों किए तो मतलब ये कॉज होगा तो इसका इफेक्ट होगा,
यस,
आत्मज्ञान आ जाएगा।
यस,
अब आत्मज्ञान में मतलब अकर्म में कर्म देखना, ये थोड़ा समझाएंगे?
हाँ, यही बात है। देखिए, अकर्म में कर्म स्थित है अर्थात उसमें बोला गया है कार्य में कारण अवस्थित है। कार्य मतलब इफेक्ट में, वो निष्काम कर्म है। बेसिकली क्या, ये समझना कि ये जो आत्मज्ञान है ये निष्काम कर्म के द्वारा आया है। तो निष्काम कर्म को जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हमें दिख क्या रहा है, इसमें टेबल ही दिख रही है, ये तो स्पष्ट है, दिख रहा है टेबल, लेकिन ये जानते हैं कि टेबल के अंदर ये पृथ्वी तत्व रहता है आत्म। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब व्यक्ति को आत्मज्ञान होगा तो क्या निष्कामता समाप्त हो जाएगी? एक प्रश्न सोचिए कभी इसमें,
मगर
आप सोचिए, विचार कीजिए, क्या जिसको आत्मज्ञान हो जाएगा उसके हृदय में उससे जो निष्कामता है वो समाप्त हो जाएगी? क्या उत्तर है पहले इसको समझिए।
नहीं, वो तो निष्काम तो रहेगा।
हाँ, निष्काम रहेगा, तो वो उसमें जो निष्कामता का एलिमेंट है, निष्काम कर्म करने की जो भावना है, वह आत्मज्ञान के समय भी रहेगी। ये मतलब अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है।
हाँ, जैसे देखिए, यहाँ ज्ञान की बात करें तो कोई गे है, मतलब कि कोई पर्सन है।
हाँ,
तो कोई पर्सन को चलिए आत्मज्ञान है, क्या आत्मा क्या अनात्मा है,
यस,
तो वो ये ज्ञान में है, तो इसका मतलब मैं उसमें देखूंगा कि वो निष्काम कर्म।
देखिए, वो निष्कामता का एलिमेंट, क्योंकि निष्काम कर्म जो है वह कार्य है, सॉरी कारण है, तो कार्य में कारण निहित रहता, इतना समझ लेना चाहिए इसको। जब आप में आत्मज्ञान होगा तभी हम समझ पाएंगे बाकी इसका मतलब क्या है। लेकिन जो यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज करी गई उसका अर्थ यही है कि जिस कारण कारण में कार्य दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप केवल निष्काम कर्म को देख रहे हैं तो उस समय तो आत्मज्ञान नहीं है, लेकिन क्योंकि आत्मज्ञान फ्यूचर में होगा इसलिए आप आत्मज्ञान को देख रहे हो। मैं फिर से रिपीट करूं, आप हम जब निष्काम कर्म कर रहे हैं तो हमें फ्यूचर का जो आत्मज्ञान है वो इसमें दिख रहा है, ठीक है। और जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुका है उसको उसमें निष्काम कर्म दिख रहा है पास्ट में। रेफरेंस फ्रेम से आप देखिए कि निष्काम कर्म किया गया है इस कारण से ये ज्ञान प्रकट हुआ।
इसी प्रभु जी, अकर्म की स्थिति मतलब ज्ञान में है वो कुछ कर नहीं रहा है, मतलब क्या है एग्जैक्ट इसका?
देखिए इसको अभी अगले वाले श्लोकों में आने वाला है, समारंभ। मतलब देखिए, आत्मज्ञान हो गया व्यक्ति को, उसका अर्थ ये नहीं कि वो कार्य नहीं करेगा, लेकिन वह इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करेगा। यही तो बात यहाँ पे बताई जा रही है। आत्मज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि वो कोई कार्य नहीं करेगा। और हम जानते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वभूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो लभते पराम का अर्थ हो गया कि उसके बाद दिव्य कार्य शुरू होते हैं। वास्तविक कार्य, वास्तविक भक्ति तो आत्मा अनुभूति के बाद ही शुरू होती, पराभक्ति ब्रह्मभूत अवस्था के बाद ही शुरू होती। तो आप मानते हैं, तो ये चीज अभी तो हम लोग भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। अगर आपको पता हो ये बात तो आप जानते हो, भागवत में भी लिखा है स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। अब उसको भक्ति करने के, भक्ति के संपर्क से बहुत सुख प्राप्त होता है। तो असली भक्ति तो तब शुरू होगी जब हमारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। तो जो आत्मज्ञानी है ऐसा तो नहीं वो खाली बैठा रहेगा, अब वह समझेगा कि मतलब वो एग्जैक्ट कहना चाहिए कि भक्ति के मुख्य कार्य जो कह सकते हैं कंप्लीटली सेल्फलेस होते हैं उसमें एंगेज होगा। तो ये नहीं कि सोचना चाहिए जो आत्मज्ञानी पुरुष है कुछ करेगा नहीं, दैट इज क्लियर क्लैरिफाई कर रहा हूँ। जैसे कि जनक आदि, यहाँ जनक आदि जो राजा थे भगवान गीता में भी बता चुके हैं, वे आत्मज्ञानी थे, सेल्फ रियलाइज्ड थे, फिर भी वे कार्य करते थे, आपने पढ़ा था ना गीता में। और युधिष्ठिर महाराज, सब लोग स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं। रामानंद राय जी, क्या वो स्वरूप सिद्ध नहीं है? सब लोग स्वरूप सिद्ध है, लेकिन बाह्य रूप से वो कार्य करते ही, ऐसा नहीं सोचा जाए कार्य नहीं करते।
एक और प्रश्न जी, यहाँ पे जो अकर्म और कर्म ये जो टर्म है, ये एक्टिविटी है या कॉन्शियसनेस है?
देखिए, निष्काम कर्म तो निश्चित रूप से एक्टिविटी भी है और कॉन्शियसनेस भी है। ये निष्काम कर्म जैसे भी हमने बोल दिया तो हम ये नहीं कह सकते कि कुछ हो नहीं रहा है, डेफिनेटली कुछ हो रहा है। बट निष्काम मींस विदाउट डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति की रहित, इच्छा से रहित।
और ये अकर्म, ये
रियलाइजेशन, जैसे कि आप देखिए,
मतलब ये कॉन्शियसनेस है,
कॉन्शियसनेस है या अवेयरनेस है, अवेयरनेस भी होना कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, ये भी है डेफिनेटली, ठीक है।
मतलब कॉन्शियसनेस में एक्टिविटी, एक्टिविटी में
देखिए प्रभुपाद जी इसको बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट कल्टीवेशन, इट मींस एक्टिविटी। नेक्टर ऑफ डिवोशन में आप पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में पढ़े हैं, ओनली कॉन्शियसनेस विल नॉट हेल्प। ये ज्ञानियों का सिस्टम होता है, खाली सोचते हैं बस मैं आत्मज्ञान हो गया और मैं कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानी है वास्तविक रूप से वो भगवान का भजन करता है। कोई प्रमाण बताएंगे भगवद गीता का? बहु नाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा। भगवान का अनन्य भाव से भजन करता है जो व्यक्ति ज्ञानी होता है। तो यही इस श्लोक में भी हम देख रहे हैं, संयुक्त कृतस्न कर्म कृत, सारे कर्म करते हुए भी व्यक्ति दिव्य स्थिति में रहता है, ठीक है। देखिए कुछ चीजें आप आज सुन रहे हैं उसको थोड़ा विचार करेंगे तो फिर समझ में आ जाता है ये चीज। ऐसा नहीं कि ये कोई भी विषय में आप थोड़ा मनन करेंगे तो समझ में आएगा इसका अर्थ क्या होता है। दूसरे शब्दों में वह जानता है कि कर्म और ज्ञान एक ही हैं, क्योंकि लक्ष्य, उनका लक्ष्य एक ही है, और इस कारण से वह आत्म तत्व का अनुसंधान अपने कर्मों के द्वारा करता है, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको आगे अभी पढ़ने वाले हैं। बाद में यह कहा जाएगा, सांख्य योग और पृथक बाला, केवल अज्ञानी ही कर्म योग को ज्ञान से अलग मानते हैं। देखिए सांख्य योग और पृथक बाला, बालह प्रवदंती न विपश्चित, कि जो लोग बुद्धिमान हैं वो ये नहीं कहते हैं कि जो सांख्य अर्थात ज्ञान अर्थात आत्मा और अनात्मा का भेद करने का जो योग है वह कर्म योग से अलग है। तो भगवान उसमें भी बोलते हैं कि जो कर्म योग है उससे श्रेष्ठ होता है, ज्ञान से श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? अधिकार की दृष्टि से। तो आत्मा अनात्मा का भेद करके चलना ये कठिन है प्राय लोगों के लिए, लेकिन अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना ये बहुत आसान है, इज़न्ट इट? यहाँ पे भी हम दिन भर में भगवान के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं, तो इसके द्वारा स्वतः व्यक्ति आत्मा की अनुभूति की ओर प्रगति कर लेता है। इसलिए क्योंकि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का लक्ष्य आत्मानुभूति है, इसलिए उनमें कोई भेद नहीं होता है। तो बेसिकली जो उसका एसेंस है वो ये है कि कर्म योग और ज्ञान योग में कोई भेद नहीं है, क्योंकि उनका लक्ष्य एक ही है। ये बात बोली जा रही है, ये बात श्रील बलदेव विद्याभूषण भंडारी, इतना तो समझ में आता। ऐसा व्यक्ति मुक्ति के योग्य है, युक्त है। रूपा जी ने इसे कैसे अनुवाद किया था कि वह दिव्य स्थिति में रहता है, इसने सारे कर्म कर लिए हैं, कृतस्न कर्म कृत, क्योंकि सारे कर्मों के फल का पर्यवसान आत्मज्ञान के आनंद में अंतर्भूत होता है। ठीक है, इसको समझ में नहीं आया होगा। हम जो कोई कर्म कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, कोई बता सकते हैं? बताइए।
भक्ति कॉन्टेस्ट में तो हम भगवान जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवान को आनंद देने के लिए कर रहे हैं।
वैसे सीधे बोला जाए तो हम कर्म क्यों करते हैं?
आनंद के लिए,
सुख के लिए। अब हम जो भोग के लिए कर्म करते हैं उसमें क्या दिक्कत होती है?
वो क्षणिक सुख होता है, बाद में फिर वो बिस्किट तुल बन जाता है।
वेरी गुड। अब यहां बोल रहे हैं कि उसने सारे कर्म कर लिए, क्यों? क्योंकि जो कर्मों का फल है वो है आत्मा का आनंद, वह उसको प्राप्त हो गया निष्काम कर्म करने के बाद। इतनी बात समझ में आ रही है? ये बात बोले, तात्पर्य पढ़िए। पर्यवसान मतलब होता है कल्मिनेशन। जैसे बहुत सारी नदियां अंततोगत्वा समुद्र मिलती हैं, तो कहा जाएगा कि नदियों का पर्यवसान कल्मिनेशन जो है समुद्र है, अंतिम स्थिति। आप माइके पढ़िए तात्पर्य।
कृष्ण भावना अमृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है।
स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है, क्या मतलब है इसका?
क्योंकि उसके सारे कार्य भगवान के लिए होते हैं,
उसको अलग से कर्म से मुक्त होने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती।
उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज,
लाइन थोड़ा समझाइए, मिलिट्री का एग्जाम्पल देखिए, किसी को पता है मिलिट्री वाला एग्जाम्पल?
जैसे एक मिलिट्री जो है वो किसी का खून कर सकता है, जैसे पाकिस्तान का को मार सकता है तो वो कृत्य जो है वो हत्या करने का, लेकिन फिर भी वो दुश्मन को मार रहा है और देश के ऑर्डर पे मार रहा है, भारत सरकार के ऑर्डर पे मार रहा है, तो उसको जो है कोई कर्म नहीं लगेगा, उल्टा उसको अवार्ड मिलेगा कि आपने जितना उसने सैनिकों को मारा।
अच्छा, हमारे पांडे जी भाई कहाँ से हैं? जौनपुर से। जौनपुर साहब पांडे जी, बताइए इसी एग्जाम्पल को आप कैशियर के संबंध में समझाइए। कैशियर समझते हैं जो बैंक में नोट गिनता है? बस ये अच्छा उत्तर है, मुझे नहीं पता। ओके, ये बताइए, अभी हमने भक्ति वृक्ष पढ़ाया था ना? यस।
जैसे कैशियर बहुत सारे पैसे गिनता है, उसके सामने सारे करोड़ रुपए पड़े, लेकिन उसके होते नहीं है, वो लेके जाने से
उसके होते नहीं है, और वो सोचता भी नहीं कि उसके हैं। दोनों बातें हैं,
उसको मालूम है, उसको मालूम है कि मुझे,
क्योंकि जब डाकू आता है तो वो सोचता नहीं कि ये मेरे नहीं है,
तुरंत।
यस, तो फिर क्या होता है पूरा बताओ, कैशियर क्या करता है?
वो नोट गिनता है और सामने उसके होते हैं और शाम को मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि पैसे गायब होने की है।
ये सब बोल दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारा कोई लाभ नहीं है, हानि नहीं, तो हम छोड़ो मरने दो, ऐसा नहीं है। यस,
जैसे बैंक का कैशियर है, उसके पास सुबह से शाम तक में करोड़ों रुपए आते हैं।
हाँ,
और वो एक एक पैसे को बहुत सावधानी से गिन के रखता है।
वेरी गुड।
कारण क्या है कि अगर एक भी पैसे होंगे तो वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की, उसके अपने जेब से देने होंगे।
yes.
तो कर्म तो बहुत ही सावधानी से पूर्वक करता है, लेकिन उसके दिमाग में ये भी रहता है कि ये सारे पैसे बैंक को है, शाम में मुझे जमा करके जाना है।
yes.
तो वो एक तरह से काम करते हुए निर्लिप्त भी रहता है।
वेरी गुड, दिस इज हाउ इट हैज टू बी एक्सप्लेन्ड। कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम लोग बोलने लगते हैं, अरे हम अपने फार्म जा रहे हैं, हम अपने फार्म से लेकर, तुम्हारा फार्म नहीं है, वो भगवान का फार्म है, प्रभुपाद जी का फार्म है। बोलना नहीं चाहिए कि मेरा फार्म है, एक फिर उसी प्रकार से भावना हो जाती है, लेकिन ये मेरा सेवा है। ठीक है, 2 रुपए भी नहीं लगाए फार्म के लिए, बोलने चलो मेरे फार्म है, मेरा फार्म है, मेरे फार्म से लेके आए, ऐसे कर। ठीक है, आगे पढ़िए। फलस्वरूप है,
फलस्वरूप मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म
बुद्धिमान है, देखिए क्योंकि अल्टीमेटली जगत दुख का घर है और ये कर्म के कारण हम इसमें फंसे हुए हैं, चाहे हम परिवार के लिए कर रहे हो चाहे किसी के लिए कर रहे हैं, कोई भी बहाना नहीं चलेगा अगले जन्म को टालने के लिए। अरे साहब हम तो अपनी पत्नी के लिए कर रहे थे, अरे साहब हम तो अपने घर को बचाने के लिए कर रहे थे, अरे साहब लड़का बीमार था ये था, ठीक है कोई बात नहीं, आपका बिल बन गया नेक्स्ट, जैसे होता है ना चरान बनता है ना, तो अरे साहब हमको पता नहीं था साहब ये था साहब, हाँ ठीक है बाद में पहले तो पैसा भरो। तो उसी प्रकार से व्यक्ति को स्पेशली मानव जीवन में ये ठानना चाहिए कि दोबारा हम जन्म प्राप्त ना करें, ठीक है। तो ये इसका एक ही तरीका है, कि इसका मतलब ये नहीं कि हम दिन भर बैठकर बस एक ही कुछ और कुछ काम ना करें, बस कृष्ण का स्मरण करें, ये केवल थियोरेटिकल है, वो किसी से होता नहीं है। मैंने तो आज तक बहुत कोई ही देखा होगा जो दिन भर बैठ के बस जप करता हो, एक ही व्यक्ति से मिला हूं मैं जिनको देखा है वाकई करते हुए कि 6 घंटे बैठे हैं तो बस सोच जब कर रहे हैं, और कोई भक्त मुझे वैसे मिले नहीं कि बस दिन भर बैठ के बस। एक दो जो लोग थे वो सब झूठे थे, तो इसलिए वह संभव नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से भगवान को अपना प्रेम समर्पित करे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये हमेशा ध्यान रखना है, फिर से रिपीट करूंगा जो भी दशरथ प्रभु ने बोला, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे फ्रेम करें इसको, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट मतलब पूरा दायित्व लेकिन कोई ममत्व नहीं इसमें, ये मेरा है मैंने किया ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन कृष्ण मेरे हैं उनके लिए कर रहा हूं, ये ममत्व होना चाहिए। पढ़िएगा,
अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस तरह से सारे कर्म बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक ना हो, किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, अथवा अपने आप को कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में तत्पर रखता है।
इसको थोड़ा समझ लीजिए एग्जाम्पल से, जैसे मैंने बताया था अभी कि कुछ लोग कहते हैं भगवद गीता को बेचना है ये तो कर्म हो गया, ये तो पैसे का लेन देन हो गया, इससे आप बंध जाओगे, तो क्या हम इसे बंध जाएंगे? नहीं, भगवान को हम बल्कि भगवान को इसे प्रसन्न करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये, और भी जितने भी कार्य, ठीक है।
चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं अतः इस सेवा के करने से उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत,
ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो भी हमारे अनंत कृष्ण प्रभु रेफर कर रहे थे, अकर्म का या आत्मज्ञान का अर्थ जो एक आप बोले थे ना कॉन्शियसनेस, दिव्य आनंद दिव्य सुख है, उसकी अनुभूति कैसे हो रही है भगवान के लिए कुछ कार्य करने से। आप देखो ये समझ में शुरुआत में नहीं आता, लेकिन आप भगवान के लिए कोई कार्य लाइक प्रैक्टिकल सर्विस भी कर रहे हो उसमें भी सुख होता है। आप पता नहीं, मेरा मेरे को तो होता है, आप पता नहीं आपको, आप लोगों को भी होता ही होगा, वो प्राय शुरुआत में समझ में नहीं आता, लेकिन आप भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, वो पैसे के लिए नहीं कीजिए, पर्टिकुलरली पैसे के लिए ना करें, तो देर इज सम टेस्ट। जैसे मैंने भुवनेश्वर प्रभु को पूछा कि आप इतने साल से एक ही सेवा कैसे कर रहे हैं रोज ना, बिला नागा बीमार भी पड़ते होंगे लेकिन रोज कुकिंग करना एक टाइम से क्यों करते हैं? तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि देखिए अगर किसी को कोई कार्य करने में रस प्राप्त होता है तो वह उसको चेंज नहीं करना चाहता। बहुत गंभीर उत्तर है क्योंकि इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ 15 साल से ना 20 साल से, कब से, बहुत समय से कर रहे हैं।
विभु चैतन्य प्रभु,
हाँ, कितनी
वृद्धावस्था में 6-6 बार जो है भोग लगा
सेवा कर रहे थे। ये जैसे कि अभी हम माधवेन्द्रपुरी पाद जी का धारण सुनते हैं, अब वो तो महान भक्त हैं, भजनानंदी साधु थे, और वह यहाँ से चंदन लेने के लिए गए बंगाल में, कौन सी ट्रेन पकड़े थे उस टाइम, वो पैदल पकड़े थे, तो बोले थे उसमें जो दुख था वो दुख ना गनीला, वो दुख नहीं गिने उसको कि कृष्ण की सेवा करने की इच्छा। एक छोटा एग्जाम्पल आपको और दूंगा, यहाँ पे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं गुणानवा प्रभु, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो वो बता रहे थे कि जब यहाँ मंदिर कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो वो सीमेंट के बैग गिन रहे थे, तो उन्होंने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद जी बाकी भक्त लोग हरे कृष्ण जप रहे हैं मतलब और माला कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, और मैं सीमेंट के बैग गिन रहा हूं, तो मैं से क्या करूं, ये क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद ने कहा यह शुद्ध भक्ति है। तो क्या प्रभुपाद जी ने उनको प्रेरणा देने के लिए बोला कि भाई कोई ये नहीं बोलूंगा तो ये सीमेंट बैग कौन गिनेगा? क्या उत्तर है?
ये शुद्ध भक्ति है क्योंकि वो मंदिर के निर्माण के लिए वो सारे बैग गिने जा रहे हैं।
यस, और प्रभुपाद जी ने गुरु कृपा प्रभु को बोला कि आप ये मंदिर यहाँ बना रहे हो और कृष्ण आपके लिए गोलोक वृंदावन में घर बना रहे हैं, मैं इसको देख सकता हूँ। तो ये हम लोग कभी कभी सोचेंगे कि भाई ये तो सब कर्म है, ये सब तो झंझट है, लेकिन थोड़ा झंझट लेकर के भगवत प्राप्ति हो, भगवान उसको कितना गिनते हैं, ये हमको ये शास्त्र सुन करके हमें समझना चाहिए। इट्स नॉट केवल आपको आपको या मेरे को इंस्पिरेशन देने के लिए हम सुन रहे हैं बोल रहे हैं, इस विज्ञान को देखने की क्षमता होनी चाहिए। कि प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि ये जो मंदिर है उसकी हर एक ईट स्पिरिचुअल है, वो देखने की क्षमता उतनी हो जाएगी, उतनी बढ़ जाएगी जितने हमारे हृदय आंखों से इंद्र तृप्ति की भावना हटेगी, उतना हमें आध्यात्मिक स्वरूप दिखाई पड़ेगा। एक सिंपल सी बात सोचिए, अभी आप आज मेरे को एक रिफ्लेक्शन आया कि व्रज के, चलो शास्त्री जी को माइक दीजिए से प्रश्न, शास्त्री जी क्या व्रज के पेड़ को काटना अपराध है या नहीं?
बहुत बड़ा अपराध,
बहुत बड़ा अपराध है। और व्रज के पेड़ में जीवामृत डालना सेवा है या नहीं है? जीवामृत कोई खाद डालना जिससे वो अच्छे से उगे सेवा है कि नहीं?
हाँ सेवा है।
अब आप कहेंगे ये तो कर्म है, आपको समझ में, आप देख रहे थे आपने कितनी बड़ी सेवा किया उस दिन। अगर आपने ये देखा कि ब्रज का पेड़ है और ये महान कोई जीव है जो ब्रज के पेड़ के रूप में प्रस्तुत हुआ है, उसको जैसे हम यहाँ वैष्णव सेवा करते हैं ना, खिलाते हैं, ऐसे ही मैं इनको सेवा करूंगा तो मुझे आशीर्वाद प्राप्त होगा, हो गए ना चेतना आपकी चेंज। समझ में आ रही बात? आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं, बड़ा आश्चर्य की बात है, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कितने बड़े भजनानंदी थे आप जानते हैं ना, उनको 200 रुपए किसी ने दिए और ने क्या किया, मैं ये नहीं आ रहा दोनों में से कहां, लेकिन या तो ब्रज या तो मायापुर में जो गाय हैं उनको रसगुल्ले खिलाए। सोचिए कि आप कहेंगे गोपालन है कि कर्मकांड है या जो भी कुछ सोच सकता है, लेकिन गायों की सेवा कितना भगवान को प्रसन्न करती है। ये चैतन्य चरितामृत में जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं तो उसमें एक आता है कि गायों की सेवा यह भी भक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम इसमें लिखा है वैष्णव सेवा, गो सेवा, सब कुछ। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि इन सभी का संबंध भगवान से जोड़कर देखना चाहिए। जीव गोस्वामी जी बोलते हैं कि जो वैष्णव को मतलब कार्य करने चाहिए उसमें तुलसी सेवा, गो सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। और सेवा करता आप जानते हो, सेव्य को सुख देना, तो गाय को खिलाने के लिए दीजिए या उनको यहाँ पे गाय को क्या कहते हैं उसको, खुजली कीजिए ऐसे करके। मैं खाली पॉइंट ही कह रहा हूँ कि भले ही बाह्य दृष्टि से कर्म लगते हैं लेकिन ये भगवान को प्रसन्न करने वाले होते हैं, हमारी अविद्या के नाश करने वाले होते हैं। जो ऐसा देख पाता है वो बुद्धिमान। ठीक, पढ़िए।
वे व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं, कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास भाव से उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है।
कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास से भाव,
हाँ,
उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। बहुत छोटा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, अगर हम किसी असुर की सेवा करते हैं तो क्या वह भक्ति है? आप लोग ना बोलते रहे यार, अब क्या सोचते हैं इतना आसान प्रश्न करूंगा, क्या किसी असुर की सेवा करना भक्ति है? कोई तो मेरा समर्थन करो, सब कृष्ण लीला भूल गए कोई? शास्त्री जी हाँ, तो अरे कौन सी कॉन्शियसनेस से कर रहे हो तो समझ में आ रहा है, लेकिन कोई लीला से उदाहरण याद आ रहा है? अक्रूर जी, आपको पता नहीं है अक्रूर जी कंस की सेवा क्यों कर रहे थे? अरे अब तो बताओ, कुछ लीला नहीं सुन रहे आप लोग लग रहा, क्योंकि भगवान का दर्शन उनको प्राप्त होगा इस कारण से। बाह्य रूप से वो भले ही अक्रूर की सेवा कर रहे थे, सॉरी कंस की सेवा कर रहे थे, लेकिन हृदय में यही अभिलाषा है। इसलिए जब भगवान को लेने जा रहे हैं तो उनको याद आ रहा है कि भगवान तो जानते हैं कि मैं किस लिए कंस की सेवा कर रहा था, उसका साथी नहीं था वो, तो बाह्य रूप से मैं कार्य कर रहा था बड़ा। इसीलिए क्यों कर रहा है कोई कार्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखने के लिए एक श्लोक और देख सकते हैं या आप लोग थक गए? अभी टाइम हम श्लोक देखते हैं। ये समझ में आया कुछ? मैं रिवाइज करा देता हूं। जो व्यक्ति देख रहा है कि मैं निष्काम कर्म का संपादन करूंगा उसके द्वारा मुझे आत्मज्ञान प्राप्त होगा, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है। ठीक है,